में से बहुतों ने कर्मा धर्मा इन सब के बारे में अपनी लाइफ में बहुत बार सुना होगा, पर किसी को इसका एग्जैक्ट मीनिंग नहीं पता होगा कि इसका मतलब क्या होता है और हम अपने लाइफ में इसको कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो रिसेंटली मैंने एक बुक पढ़ी जिसका नाम था धर्मा, और मुझे लगता है कि बहुत से जो लिसनर हैं उन्होंने इस बुक के बारे में सुना होगा, जो कि अमित त्रिपाठी द्वारा लिखी गई है, और उसकी जो सिस्टर है भावना रॉय, उन्होंने भी अमित त्रिपाठी की इसमें मदद की है। तो इस बुक में जो हमारी जो महाभारत और रामायण, मतलब जो एपिक्स है, उन्हीं सब की छोटी छोटी स्टोरी है, और उसी को डिकोड करके हमारी लाइफ में उसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है वो बताया गया है। तो आज का जो मेरा पॉडकास्ट होगा वो इसी बुक के ऊपर बेस होगा कि हम अपनी लाइफ में इन सबको कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और इन सब का मतलब क्या होता है, क्योंकि हम में से बहुतों ने बहुत बहुत सा ज्ञान अपने दिमाग में भर रखा है, पर उन सबको ये नहीं पता कि जो उनके दिमाग में भरा है वो सही है कि गलत है। हम कहीं से भी कुछ भी पढ़ते हैं और उसको समझ लेते कि हाँ ये सही होगा, बट हम कभी भी उसका जो मेन सोर्स होता है वहाँ से कभी हम वो चीज़ पढ़ते ही नहीं हैं। और ऐसे ही कभी सोशल साइट्स पे हमें कोई पोस्ट मिल गया तो वहाँ पे देख लिया, फिर उसी से हम अपने आप को कंपेयर करते हैं और उसी से इफ़ेक्ट होते हैं और उस चीज़ को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना शुरू कर देते हैं, बट कभी भी हम उस चीज़ को ठीक ढंग से अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं। तो मुझे लगता है कि आज का पॉडकास्ट आप सबके लिए बहुत हेल्पफुल होगा, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं हम कर्मा से कि कर्मा होता क्या है। हमने बहुत बार ये सुना होगा कि कर्मा कोई एक्टिविटी होती है, जैसे हम कुछ भी करते हैं, कोई भी कर्म करते हैं वो कर्मा है। हाँ, तो सही में कर्मा जो है वो कोई कर्म है, कोई एक्टिविटी है जो हम करते हैं, और वो सही भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है। वो डिपेंड करता है कि हम जो भी कर रहे हैं उसका रिज़ल्ट क्या निकल रहा है। उसका रिज़ल्ट जो निकलेगा इसका मतलब ये होगा कि हमारा जो कर्म था वो सही है। आप अच्छे कर्म कर रहे हो, ठीक है, बट उसका जो रिज़ल्ट है वो गलत निकल रहा है, तो मतलब आपका कर्मा जो है वो गलत है। बट अगर आप गलत कर्म कर रहे हो, आप गलत कर रहे हो, जो आपके मतलब जो भी आपका कर्मा है वो गलत है, कुछ गलत कर रहे हो, बट इससे अगर कुछ अच्छा हो रहा है, ठीक है, तो आपका जो कर्मा है वो पॉजिटिव है। तो यही होता है कर्मा, कि जो आपका रिज़ल्ट है वो नेगेटिव या फिर पॉजिटिव हो सकता है जो आप कुछ कर रहे हो उससे। तो इसके लिए एक एग्ज़ाम्पल है। तो एक आदमी था जिसका नाम था लेवन आउबो, और उसने अपनी पूरी लाइफ को एक जेल में बिताया था। अपने सिद्धांतों को मानते हुए उसने अपनी लाइफ को जेल में बिताया था, और वो चाहता था कि जो उसकी कंट्री है वो कम्युनिस्ट पार्टी, जो चाइना की जो कम्युनिस्ट पार्टी थी, उससे मतलब उसकी कंट्री को बचाया जाए। तो उसके जो सिद्धांत, मतलब जो वो चाहता था, उसकी वजह से वो जेल में था। पर जो CPC थी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, वो जो काम कर रही थी उससे बहुत से जो मिलियंस ऑफ पीपल थे वो पॉवर्टी लाइन से ऊपर हो गए थे। मतलब जो मिलियंस ऑफ पीपल थे वो अब गरीब नहीं रहे थे। भले ही कम्युनिस्ट पार्टी जो थी वो कुछ भी कर रही थी, उनका मकसद कुछ भी था, ठीक है, पर उसका जो रिज़ल्ट निकला वो क्या था कि जो गरीब लोग थे अब वो गरीब नहीं रहे थे। मिलियंस ऑफ गरीब लोग जो थे वो गरीब नहीं रहे थे। तो पर जो CPC थी उसका मकसद ये था कि वो उनकी जो पार्टी है वो पूरे के पूरे वर्ल्ड पे अपना राज करे, मतलब उसकी सत्ता पूरे वर्ल्ड पे हो। पर इससे हुआ क्या, करना ये चाहती थी, ठीक है, उन्होंने ऐसे ऐसे एक्शंस भी लिए होंगे, बट इससे मतलब जिसका रिज़ल्ट निकला उससे ये निकला कि मिलियंस ऑफ पीपल जो थे वो पॉवर्टी लाइन से ऊपर आ गए। तो मुझे लगता है कि इससे कर्मा समझ में आ गया होगा कि हम जो भी करते हैं उसका रिज़ल्ट क्या होता है, उस पर डिपेंड करता है कि हमारा कर्मा कैसा था। इससे हमें ये पता चलता है कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का जो कर्मा था वो लेवन आइबोज के कर्मा से अच्छा था, उससे बेटर था। भले दोनों का एम कुछ भी हो, पर जो उसका रिज़ल्ट था वो सीपीसी का जो कर्मा था वो ज़्यादा अच्छा था, क्योंकि उससे मिलियंस ऑफ पीपल थे वो पॉवर्टी लाइन से आगे आ गए थे, मतलब गरीब नहीं रहे थे। तो धर्म क्या होता है, धर्म की क्या इम्पोर्टेंस है, और हमें अपने धर्म को फॉलो करने की क्या ज़रूरत है? तो इस यूनिवर्स में जो भी चीज़ें हैं, आप सन ले लो, मून ले लो, ह्यूमन बींग्स ले लो, कोई एनिमल ले लो, सबका कोई ना कोई काम है, या फिर कोई वस्तु ले लो, कोई भी थिंग, सबका कोई ना कोई काम है इस यूनिवर्स में, और उसको वो चीज़ फॉलो करनी चाहिए जिस एम से वो इस यूनिवर्स में है। तो वही होता है उसका धर्म, धर्मा। जब आप अपनी लाइफ में अपना पर्पस जान लेते हैं, देन यू आर इन अ स्टेट ऑफ धर्मा। और अगर हम धर्मा के थोड़ा डीप जाए तो उसके बाद आता है स्वधर्मा। स्वधर्म का क्या मतलब होता है? तो इसका मतलब ये होता है कि आप जब इस यूनिवर्स में आए हैं तो आपके ऊपर कोई ना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कोई ना कोई नहीं, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जब कोई चाइल्ड बर्थ लेता है तो उस टाइम पे वो किसी का बच्चा होता है, किसी का भाई होता है, या फिर वो किसी की बहन होती है, तो उसके हिसाब से तभी से उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है अपनी फैमिली के लिए, अपनी कंट्री के लिए, अपने आसपास के एनवायरनमेंट के लिए, मतलब बहुत सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बन जाती है। तो इसको हम स्वधर्मा बोलते हैं। मतलब धर्मा की अगर हम थोड़ा डीप जाए तो फिर आता है स्वधर्मा। धर्मा हमारा ये होता है कि हम किसी पर्पस से इस यूनिवर्स में आए हैं, और स्वधर्मा को आप एज ए रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हैं, और कभी भी हमें अपने स्वधर्म से नहीं हटना चाहिए, हमें कभी उसके लिए कोई एक्सक्यूज़ नहीं देना चाहिए कि ऐसा हुआ था इसलिए मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं कर पाया पूरी। हमें कभी उसके लिए स्टोरीज़ नहीं बनानी चाहिए, हमें उसके जगह पे उस चीज़ को एग्ज़ामिन करना चाहिए कि उसका एक्चुअल रीज़न क्या था कि मैं क्यों अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी नहीं कर सका। अगर हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी नहीं करते तो अंदर से गिल्ट आता है, और अगर आप उस चीज़ को, अपने स्वधर्म को पूरा करते हैं, मतलब जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको पूरा करते, तो अंदर से एक सेटिस्फेक्शन होता है। तो हमें ज़रूरत है कि हम अपने आप को जानें, ना कि कोई स्टोरी बना के, कोई एक्सक्यूज़ दे के उस चीज़ से पीछा छुड़ा ले। अच्छी चीज़ें तभी आपके साथ जुड़ेंगी जब आप अपने अंदर की वीकनेस और इश्यूज़ को हटाएंगे, और आप अपने आप के साथ ऑनेस्ट होंगे कि सच में मैंने क्या किया था, सच में क्या गलती थी उस टाइम पे मेरी कि मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं संभाल सका। सबसे पहले अगर कोई इंसान इस यूनिवर्स में आता है तो सबसे पहले उसका होता है कि उसका धर्म क्या है और स्वधर्म क्या है, और कर्मा तो बाद की चीज़ है। तो सबसे पहले हमें अपने धर्म को, अपने स्वधर्म को ले कर चलना चाहिए, और कभी भी उसके लिए एक्सक्यूज़ नहीं देना चाहिए। अपने आप को गलत कंफर्ट देना बहुत इजी होता है, और हम बहुत बार इसी को अपना कर्म समझ लेते हैं, अपना कर्मा समझ लेते हैं, जब हमें किसी भी चीज़ में कंफर्ट नज़र आता है। और बहुत बार जो कर्मा है वो हमें मिसगाइड करता है, हम जो कर रहे हैं उससे हमें कंफर्ट मिलता है तो हमारा कर्मा हमें मिसगाइड करता है, और इससे हम अपने धर्म से भटक जाते हैं। बहुत बार ऐसा होता है। तो इसका एक एग्ज़ाम्पल है गंधारी का। गंधारी जो थी वो धृतराष्ट्र की वाइफ थी, और उसने अपने हस्बैंड के लिए अपने आप को ब्लाइंडफोल्ड कर दिया था पूरी की पूरी लाइफ के लिए, और उसने ये सोचा कि वो उसका सेक्रीफाइस है, क्योंकि उसका हस्बैंड जो है वो भी देख नहीं सकता, तो वो भी अपने आप को ब्लाइंड फोल्ड कर लेगी, और वो भी कभी उसी की तरह, मतलब अपने आँखों से कभी देखेगी ही नहीं लाइफ को। पर उस टाइम पे उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या थी, उसका धर्म क्या था? उसका धर्म ये था कि जो उसके 100 पुत्र थे, जो उसके बच्चे थे, वो उनको गाइड करे, उनको राह दिखाए, पर उसने ऐसा नहीं किया और वो अपने हस्बैंड की तरह, मतलब उसका हस्बैंड तो वैसे ब्लाइंड था पर उसी के लिए उसने अपने आप को ब्लाइंड फोल्ड कर दिया। तो बहुत बार जो कर्मा होता है वो मिसगाइड कर देता है, इसीलिए हमें हमेशा अपने धर्म के साथ चलना चाहिए और धर्म के हिसाब से हमारा कर्म होना चाहिए, ना कि हमारे कर्म से हम चले, ऐसा नहीं होना चाहिए कभी भी, जैसा गंधारी ने किया था। और इस वजह से उसका जो सेक्रीफाइस था वो सेक्रीफाइस नहीं था। तो जब गंधारी का सेक्रीफाइस नहीं था तो किसका सेक्रीफाइस था, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है, तो अब मैं इसको अच्छे से आपको एक्सप्लेन करती हूँ। हमने महाभारत में एक कैरेक्टर का नाम ज़रूर सुना होगा जिसका नाम था कुंती। कुंती जो थी वो पांडव की पत्नी थी। वैसे तो पांडव की दो पत्नियाँ थी, माद्री और कुंती, पर जो माद्री और पांडव जो थे वो दोनों की दोनों की डेथ हो जाती है, और जो माद्री के दो बच्चे थे नकुल और सहदेव, जिनको पांच पांडव में सबसे सुंदर और सबसे छोटा बताया गया है, उनको कुंती ही पोसती है, पालती है और बड़ा करती है। तो इसमें जो कुंती है उसने कभी भी अपना जो सेक्रीफाइस था, मतलब कुंती ने पांचों पांडवों को बिना किसी भेदभाव के, नकुल और सहदेव को भी, मतलब अपने बच्चों के साथ ही बड़ा किया और कोई भेदभाव नहीं किया, और उसने जितने भी सेक्रीफाइसेस किए उसको कभी बताया नहीं, जताया नहीं कि मैंने ये किया तुम्हारे लिए और मैंने अकेले ही तुम्हें पोस्ट पाल के बड़ा किया है। वो कभी भी पांचों पांडवों के लाइफ का सेंटर पॉइंट नहीं बनी, मतलब कभी दिखाया नहीं उसने कि तुम्हें जो करना है मेरे लिए करना है, ऐसा कुछ नहीं, वो कभी भी सेंटर पॉइंट नहीं बनी। तो जो एक्चुअल सेक्रीफाइस होता है उसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है कुंती का सेक्रीफाइस। तो सेक्रीफाइस का मतलब ही ये होता है कि हम अपने डिज़ायर्स को साइड में करके अपनी ड्यूटी को पूरा करें, जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम उसको पूरा करें अपने डिज़ायर्स को साइड में रख के। और इसका मतलब ये नहीं है कि हम किसी और के बैड बिहेवियर को टॉलरेट करें, इसका मतलब ये है कि हम बस अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरा करें, और अगर कोई हमारे साथ बैड बिहेव करता है तो हम उसका जवाब दें। तो सेक्रीफाइस का मतलब यही होता है कि हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करें अपने डिज़ायर को साइड में रख के। और जब हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करते हैं तो और सेक्रीफाइस करते हैं, मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करते हुए सेक्रीफाइस करते हैं, तो हमें एक जॉय मिलता है, हम खुश होते हैं, वही होता है एक्चुअल सेक्रीफाइस। कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि जो चीज़ हमारे पास नहीं है वो उसके पास क्यों है, वो चीज़ तो वो डिज़र्व ही नहीं करता, फिर उसके पास वो चीज़ क्यों है। इससे हमारे अंदर उस व्यक्ति के प्रति एनवी वाली भावना आती है। एनवी का अर्थ है कि हमें उसके लिए जेलस फील होना शुरू हो जाता है। इसका एक एग्जाम्पल है दुर्योधन का, जो कि डिज़र्व करता था कि वो हस्तिनापुर का किंग हो। उसके जो पापा थे जिनका नाम था धृतराष्ट्र, वो पांडवों से बड़े थे, और इसके हिसाब से धृतराष्ट्र भी डिज़र्व करते थे कि वो राजा हो हस्तिनापुर के, पर वो देख नहीं सकते थे, इस वजह से पांडव जो थे वो उस राजगद्दी पे बैठे थे और वो हस्तिनापुर के राजा थे। तो इस हिसाब से जो धृतराष्ट्र है उसका बेटा जो दुर्योधन है सबसे बड़ा, वो डिज़र्व करता था कि वो हस्तिनापुर का राजा हो, पर ऐसा नहीं हुआ, जो दुर्योधन है उसको हस्तिनापुर का पद नहीं मिला। तो इस वजह से जो दुर्योधन है उसके अंदर जेलसी वाली भावना आ गई, किसके प्रति, पांडव के प्रति। और दुर्योधन की जेलसी वाली भावना के लिए बहुत से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है, जैसे सुभद्रा जो थी, जो श्री कृष्ण और बलराम की बहन थी, उससे दुर्योधन मैरी करना चाहता था, पर जो सुभद्रा थी उसने अर्जुन को सिलेक्ट किया था जिसे वो शादी करेगी। जो इंसान खुद से ही सेटिस्फाई होता है, तो वैसे इंसानों के लिए एनवियस होने की जो परसेंटेज होती है वो कम हो जाती है। तो हमें हमेशा वांटिंग एंड हैविंग के बीच का जो डिफरेंस है, जिसको हम जेलस वाली भावना भी बोल सकते हैं, एनवी बोल सकते हैं, तो उसके बीच के डिफरेंस को समझना चाहिए कि क्या मैं चाहता हूँ और क्या मेरे पास है। क्योंकि हमारी जो वांटिंग वाली भावना है वो कभी भी ख़त्म नहीं होती है, तो इसीलिए हमें जानने की ज़रूरत है कि मतलब मुझे किस चीज़ की नीड है, वो चीज़ होना ज़रूरी होता है। पर वांटिंग जो है वो कभी ख़त्म नहीं होती है, तो हमें इस चीज़ पे काम करना चाहिए, इन दोनों के बीच के डिफरेंस को जानना चाहिए। तो हमें से बहुत लोग लस्ट, लव एंड सेंसुअलिटी, इन सब के बीच बहुत बार कंफ्यूज होंगे कि मैंने जो किया वो लस्ट था कि सेक्स था, लव था, क्या था। तो आज मैं जो आपको बताऊंगी वो इसी सब के ऊपर बेस्ड होगा, और आई होप कि आप सबको समझ में आ जाएगा। ये सेंसुअलिटी का मतलब सिर्फ यही होता है कि हम जो भी कार्य करते हैं, हम जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं, जो भी एक्शन ले रहे हैं, वो जो कर रहे हैं हम, उसमें हम बिल्कुल इन्वॉल्व है, हमारे पूरे सेंसेस हमारे साथ हैं, हम उस चीज़ को माइंडफुल्ली कर रहे हैं, माइंडलेसली नहीं कर रहे हैं। हमें पता है कि हम क्या कर रहे हैं, हमारे सारे सेंसेस उस एक्शन के प्रति सक्रिय है, एक्टिव है। पर लस्ट जो होता है वो बिल्कुल इसके अपोजिट होता है। इसमें सिर्फ आप एक्शन कर रहे हो, आपको ये नहीं पता कि जो आप कर रहे हो उसमें आपके जो सेंसेस है वो आपके साथ है कि नहीं है। जो लस्ट होता है वो माइंडलेस होता है, उसमें सिर्फ और सिर्फ आप एक्शन कर रहे हो, आपको नहीं पता जो आपके साथ हो रहा है, आप जो कर रहे हो वो क्या है। पर सेंसुअलिटी जो होती है वो इसकी बिल्कुल अपोजिट होती है, वो माइंडफुल्ली होती है और लस्ट माइंडलेसली होती है। तो जो दुशासन था, दुर्योधन का छोटा भाई और धृतराष्ट्र का दूसरा पुत्र, उसने द्रौपदी का चीरहरण किया था, जहाँ पे वो सभी सब चासर खेल रहे थे और पांडव हार गए थे द्रौपदी को। तो एक उड़ीसा के राइटर है, उन्होंने कहा था कि जो दुशासन था वो हेल्पलेस था, वो सिर्फ अपने भाई की आज्ञा को मान रहा था, वो सिर्फ ओबे कर रहा था अपने भाई के डिसीज़न को। जो रेपिस्ट होते हैं, बहुत से रेपिस्ट ये बोलते हैं कि उस टाइम पे मैं अपने आप पे कंट्रोल नहीं कर पाया, ये कैसे हुआ मुझे नहीं पता, तो वो सब के सब सिर्फ एक्सक्यूज़ देते हैं। और उस टाइम पे जो वो करते हैं वो लस्ट होता है, क्योंकि उनका जो माइंड होता है वो उस चीज़ में इन्वॉल्व नहीं होता, वो माइंडलेसली करते हैं जिस चीज़ को करते हैं। तो आई होप इससे समझ में आ गया हो कि लस्ट क्या होता है। और जो दुशासन था जिसने द्रौपदी का चीरहरण किया था और उसके लिए ओडियन राइटर ने बोला था कि उसकी कोई गलती नहीं थी, वो सिर्फ अपने भाई की आज्ञा का पालन कर रहा था, तो हमें बहुत बार ये बोलने में बहुत कन्वीनियंस होता है कि मैं हेल्पलेस था उस टाइम पे, मैं सिर्फ अपने बड़े की आज्ञा का पालन कर रहा था जो मेरा धर्म था। तो इस टाइम पे हमारे अंदर ये चीज़ आना ज़रूरी होता है कि जो मेरे से बड़ा मुझे कह रहा है वो सही है कि गलत है। तो इस टाइम पे भी हमें अपने आप को अपने सेंसेस में होना चाहिए कि जो हम कर रहे हैं वो सही है कि गलत है। हमेशा बड़ों की आज्ञा का पालन करना ही सही नहीं होता है, जैसा कि देवव्रत ने भी किया था, भीष्म पितामह ने भी किया था अपने पापा के लिए। हमें ज़्यादातर अपने सेंसेस में होना चाहिए और खुद का डिसीज़न हमें खुद लेना चाहिए। तो अब बात आती है कि लस्ट को हम कैसे हटाए अपने अंदर से। तो बहुत से लोग सेलिबसी का रास्ता अपनाते हैं कि वो कभी भी किसी से शादी नहीं करेंगे और इन सब चीज़ों से दूर ही रहेंगे, तो कभी उनके अंदर वैसी फीलिंग ही नहीं आएगी। पर ऐसा नहीं है, एज अ ह्यूमन बींग सबके अंदर ऐसी फीलिंग आती है, और जो सेक्स है वो बायोलॉजिकल नीड होती है सभी की, तो हम इसको करने से डिनाई नहीं कर सकते हैं। और अगर आप इस चीज़ को करने से डिनाई करते हैं तो ये आपके फिज़िकल जो जो भी एक्टिविटी आप कर रहे हैं और जो मेंटली जो भी आप सोच रहे हैं, आपके सोच पे, आपके काम करने पे, मतलब हर चीज़ पे ये इफ़ेक्ट करेगा। मतलब एक एज के बाद सेक्स करना ज़रूरी होता है, ये नीड होती है, बायोलॉजिकल नीड होती है। और सेक्स के द्वारा ही हम लस्ट के ऊपर अपना कंट्रोल पा सकते हैं, और हम सेक्स के द्वारा ही अपने लव को दिखा सकते हैं। लव जब हम किसी को उसके शरीर के द्वारा दिखाते हैं तो उसको सेक्स बोलते हैं, और जब हम लव को माइंड के द्वारा दिखाते हैं तो वो लव होता है, और जब हम उसके स्पिरिट के द्वारा दिखाते हैं, उसके सोल के द्वारा दिखाते हैं, तो वो प्रेयर होता है। तो जो सेक्स है वही लव का एक पार्ट है, जिसको हम थ्रू उसके बॉडी दिखाते हैं। और सेक्स की जो एनर्जी होती है उसको कंट्रोल करना डिफ़िकल्ट होता है, तो कभी हमें उसको कंट्रोल भी नहीं करना चाहिए। जैसा हो रहा है वैसा होने दीजिए, पर उसको कभी भी लस्ट में परिवर्तित मत करिए। लव कर रहे हैं, लव को एक्सप्रेस करने का तरीका ही सेक्स है, तो सेक्स करना गलत बात नहीं है, कभी डिनाई नहीं करना चाहिए। आपको सेक्स करने का मन कर रहा है तो करिए।